ओम शांति। यूरोप में वैज्ञानिकों ने एक बार एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग में एक कमरे में 8 बंदर को रखा और उस कमरे के बीचों बीच ऊपर केलों का एक गुच्छा और एक सीढ़ी जो उस केले तक पहुंचाए। तो जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग चालू हुआ, जो 8 बंदर थे उसमें से एक बंदर ने जैसे ही वो केले देखे, सीढ़ी पर चढ़कर केले खाने के लिए ऊपर जाने लगा। और जैसे ही एक बंदर ऊपर जाने लगा, सभी बंदरों को एकदम ठंडे पानी से स्प्रे किया गया, जिससे वो सारे बंदर हैरान हो गए, परेशान हो गए। फिर वो बंदर नीचे उतरा, थोड़ी देर सब शांत रहे। थोड़ी देर के बाद दूसरा बंदर चढ़ने लगा केले खाने के लिए, फिर से सबके ऊपर स्प्रे किया गया बौछार ठंड पानी की। तो फिर बाकी बंदर अब समझ गए ये बौछार क्यों हो रही है। जब तीसरा बंदर थोड़ी देर के बाद चढ़ने लगा तो सभी बंदरों ने पकड़कर उसको नीचे किया कि उनके समझ में आ गया कि जैसे ही कोई ऊपर चढ़ता है बहुत ठंडा पानी सहन करना पड़ता है। और उसके बाद सभी बंदर शांत हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। केले लटके हुए थे पर चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि जो भी चढ़ता बाकी सारे बंदर उसके ऊपर अटैक करते। फिर वैज्ञानिकों ने एक ओरिजिनल बंदर 8 में से निकाल दिया और एक नया बंदर डाला उसने। तो उस नए बंदर को आश्चर्य हुआ कि कोई केले क्यों नहीं खा रहा, तो वो चढ़ने लगा। और जैसे वो चढ़ने लगा फिर से ठंडे पानी की बौछार हो गई और बाकी बंदरों ने पकड़कर उसको नीचे लाया। थोड़े समय के बाद ओरिजिनल बंदरों में से सेकंड बंदर को रिप्लेस कर दिया नए बंदर से। वो भी चढ़ने लगा और बाकी सभी बंदर इंक्लूडिंग जो पहले आया था उस सब ने मिलकर उसके ऊपर अटैक किया और उसको नीचे घसीटा। थोड़े देर के बाद एक तीसरा बंदर रिप्लेस कर दिया गया, वो भी चढ़ने लगा तो उसको पकड़ने के लिए अभी बौछार हुई नहीं है पानी की। जो पहला रिप्लेस्ड बंदर और दूसरा, पहले ने तो अनुभव किया था ठंडे पानी का पर दूसरों को कोई खबर नहीं थी, वो भी सबके साथ मिलकर उसको नीचे लाने लगा। और धीरे धीरे 8 के 8 बंदरों को रिप्लेस कर दिया गया, एक एक्स्ट्रा भी डाल दिया जो ओरिजिनल 8 और एक बीच में आया था पहला, उसको भी हटा दिया गया और अब सब नए बंदर थे। और ये सारे नए बंदर कोई भी किसी पर भी पानी की बौछार नहीं हुई थी, परंतु कोई भी उस केले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इन्हें पता भी नहीं था कि बाकी सब क्यों नहीं जा रहे थे जब जब एक एक ने एंट्री की, क्योंकि आने वाले नए साथ जो थे उनको कोई अनुभव नहीं था, वो वही कर रहे थे जो बाकी सबने किया। और लास्ट में सभी बंदर शांति से बैठे हुए, सब नए हैं, किसी पर भी पानी की बौछार नहीं हुई है। पर कोई भी वो केले नहीं खा रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ और कंक्लूजन निकाला गया कि मनुष्य का मन किस तरह काम करता है। जैसे ये बंदर है उसी तरह मन भी है। उन्हीं मार्गों पर जाना चाहता है जिस मार्ग पर सारा संसार जा रहा है। माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस और नकल करता है जो बनी बनाई रस्में हैं, रीति है, रिवाज है, पिटा पिटाया रास्ता है, द सेम ट्रॉडन पाथ, उसी पे जाता है और वही करता है जो दूसरे कर रहे हैं और फिर अंदर से बेचैन भी रहता है और उसे समझ भी नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीजें ऐसे करता है जैसे किसी भ्रम में है, जैसे किसी के वश में है, जैसे अंधाधुन चल रहा है मार्ग से, कंफ्यूज्ड। क्या ऐसे मन को वश में किया जा सकता है जिसका स्वभाव, जिसकी टेंडेंसी आउटवर्ड है, जिसका स्वभाव नकल करने का है, जो कोई भी रिस्क, कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती लेना नहीं चाहता और इस मार्ग पर चलते हुए अंदर ही अंदर बेचैन रहता है। स्वामी विवेकानंद ने एक लेक्चर में मन की तुलना बंदर से की है। मन बंदर जैसा है, अस्थिर, चंचल, भटकता हुआ, जैसे बंदर एक स्थान पर भी स्थिर नहीं रहता, मन भी वैसा ही है। और फिर इस बंदर को किसी ने शराब पिला दी तो वो बंदर और बेचैन होगा और थोड़ी देर के बाद एक बिच्छू ने उस बंदर को काट दिया, फिर ये बंदर और बेचैन उठेगा और फिर थोड़ी देर के बाद एक प्रेत आत्मा ने उस बंदर में प्रवेश कर लिया। दिस इज माइंड, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंट्रोल। पहले ही बंदर की तरह, बंदर पहले ही हलचल में चंचल है और किसी ने फिर उसको इच्छाओं का, इच्छाओं की शराब पिला दी और विकार रूपी बिच्छू ने उसे काट दिया और संसार की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये सारी प्रेत आत्मा के समान उस बंदर में प्रवेश कर गए। ये मन है, अब इसको कैसे वश में करें? इसलिए कहा गया कहावत में, सारा संसार, सारे संसारी, सारी दुनिया, सारे लोक इस मन के वश नाच रहे हैं। ये मन बंदर जैसा है और कभी कभी मदारी बन जाता है तो फिर बंदर बनता है, तो फिर कभी मदारी बनता है तो फिर कभी बंदर, कभी मन को वश में कर लेते हैं और कभी मन के वश हो जाते हैं। कैसे इस मन को इस संसार में रहते हुए, यहां की मोहमाया में रहते हुए स्थिर करते, एकाग्र करते, शांत कर दे। हम सबसे ज्यादा ज्ञान तब ग्रहण करते हैं जब हमारा मन एकदम शांत होता है। मन जितना बेचैन और मन जितना हलचल में, उतना ही वो कम ज्ञान को धारण करता है। जितना स्थिर है अंदर से, उतना ही ज्ञान की धारणा सदा होती है। कोई ज्ञान का वाक्य हम कई दिनों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु धारणा नहीं हो पाती क्योंकि मन अस्थिर है। यदि हम देखेंगे सुबह सुबह जब मन बहुत शांत है, अमृत वेले के बाद का जो समय है उसमें बैठकर हम कोई चीज पढ़े या याद करें तो बहुत जल्दी धारण होती है। इसके लिए एक अनस्पोकन श्रीमत कहो, जिसको अमृत वेले के बाद का जो समय है 4:45 से तो 7 तक का, ये समय हमारे मन की ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा होती है और इस समय सो जाना अमृत वेले के बाद, अर्थात की कमाई चट कर देना। इसी समय का आधा घंटा भी दिन के 2 घंटे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जो भी मुरली का चिंतन, मनन, अध्ययन करना चाहे और उसे समझना चाहे, उन वाक्यों को, साधारण से दिखने वाले वो वाक्य, कितना राज उसमें समाया हुआ है। वो एक ही शब्द शक्ति भर देगा, जैसे आज की मुरली। बाप किन बच्चों को देख रहे हैं, नहीं बच्चों को देख रहे, सेवाधारी बच्चों को देख रहे, समर्थ बच्चों को देख रहे। मैं समर्थ आत्मा हूं। पूरी मुरली पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, वहीं पर मन रुक गया और शक्ति का अनुभव, मैं शक्तिशाली हूं। I shall drink the entire ocean. Before me, mountains will crumble down. सारे समुद्र को पी जाऊंगा, ऐसी शक्ति। मेरे सामने सारे पर्वत गिर जाएंगे, ऐसी शक्ति। मैं समर्थ आत्मा हूं। क्योंकि कौन कह रहा है? मनुष्य नहीं कह रहे, कोई गुरु, कोई गोसाई, कोई शंकराचार्य, कोई इमाम, कोई पैगंबर, कोई पयंबर, कोई ईश्वर पुत्र, कोई अवतार, कोई धर्म गुरु, कोई धर्म स्थापक, कोई संसार की महान आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, ये नहीं कह रहे। वो कह रहा है जो सब कुछ जानता है। बाप स्नेही सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं, समर्थ आत्माओं को देख रहे हैं। अमृत वेले के बाद जब इस तरह का चिंतन या पढ़ाई की जाए तो उसका अवचेतन मन पर गहरा असर पड़ता है। बाप के तुम समीप संबंध में आए हो, 3 आधार बताए मुरली में। स्नेह का संबंध, बुद्धि की स्पष्टता और बुद्धि की स्वच्छता। मेरी बुद्धि कितनी स्वच्छ हुई है, कितनी निर्मल हुई है, कौन सा किचड़ा उसमें भरा है, कौन सा परचिंतन, परदर्शन, परदोष उसमें भरा है, अंदर क्या चिंतन हो रहा है। बाप के समीप वो है जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, स्पष्ट है और प्रेम का संबंध है। जबरदस्ती का संबंध नहीं, प्रेम में डूबी है आत्मा। तो जो हम कह रहे थे, जितना मन शांत उतनी मन की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। और सबसे अच्छा समय अमृत वेले के बात का समय, वो समय नींद में, आलस में, प्रमाद में, डिजिटल वर्ल्ड में, व्यर्थ की बातों में गवाना नहीं, क्योंकि उस समय हम जो पढ़ते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो इतना गहरा ग्रहण हो जाता है कि हम धीरे धीरे उसके स्वरूप बनते जाते हैं। अगर हम कहें ये इंद्र सभा है, तो कौन कौन है जो अमृत वेले के बाद सो जाते हैं? मन का हाथ उठाना, मन का हाथ, स्थूल हाथ नहीं। सबसे पहले इस पर काम करना है। पोस्ट अमृत वेला, स्वयं को एकांत में ले जाना, मौन में ले जाना, और उस एकांत और उस मौन की अवस्था में ज्ञान का चिंतन करना, जीवन का चिंतन करना, क्या खोया क्या पाया इसका चिंतन करना, आज सारे दिनचर्या में क्या करना है उसका चिंतन करना, प्लानिंग करना, सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे नॉलेजफुल तो बन गए हैं, तीनों कालों को तो जान गए, पुरुषार्थ को और परिणाम को जान गए, विधि और सिद्धि को जान गए हैं, परंतु अब भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं हुए हैं। डायरेक्शन मिला, सोचा और किया, ये नहीं हुआ है। और ऐसे करने वाले कोटों में कोई है? बहुत कम है। जो डायरेक्शन मिला उसे फल की तरह रखा हुआ है, और कोई कोई है उसको जला रहे हैं, उसको भून रहे हैं, उसको भविष्य का फल बना रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, अभी के अभी नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ, आज नई बात सुनी, उसको धारण करने के लिए एकांत, मौन, ऐसा एकांत, और जितना गहरा एकांत उतनी धारणा अधिक, क्योंकि अध्यात्म का फूल मौन के बगीचे में खिलता है। आत्मा निर्वाण के मंदिर में जब प्रवेश करती है, तब अंकुरित होती है, पल्लवित होती है, और वो समय है अमृत वेले के बात का समय। तो उस समय सो जाना बहुत अधिक होशियारी नहीं। किसी किसी की दिनचर्या ऐसी है कि उसमें दिन में, दोपहर में सोने का टाइम नहीं, परंतु हर एक को अपनी दिनचर्या सेट करनी है। कम से कम एक घंटा सुबह, उसमें हमें कोई क्लास भी नहीं सुननी, केवल पढ़ना है। और वो पढ़ना भी ऐसा कि एक ही वाक्य पढ़े और रुक जाए, और सोचे ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वो कौन सी पुरानी और पक्की आदत हो गई आज सुबह अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा। अपनी आदतों को चेक करना है तो इस मन जो कभी पंदर बनता है कभी मदारी और मचाता है और हम नाचते रहते हैं और हम उसके वश हो जाते हैं, ऐसे चंचल मन को क्या हम करें कि वो शांत हो जाए, वश में आ जाए, हमारा हर कहना माने। निश्चित ही मन को वश में करना मुश्किल है। चंचलम ही मन कृष्णम, हे गोविंद मैं क्या करूं, मेरा ये मन बहुत चंचल है। उत्तर दिया है गीता में ही, वैराग्ये न तु कौन्तेय, अभ्यासे न तु कौन्तेय, वैराग्ये न च गृह्यते। हे अर्जुन अभ्यास और वैराग से इस मन को वश में कर। तो आज की इस चर्चा में मन को स्थिर करने के लिए, वश में करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए हम ऐसी आठ विधियां, आठ मार्ग जो बाबा ने यहां वहां मुरलियों में बताए और कुछ बातें आज तक के अध्यात्मवादियों ने बताए। सबसे पहला है सेल्फ कंपैशन, स्वयं पर दया, स्वयं पर कृपा। हमें अध्यात्म में ये बताया जाता है दूसरों पर रहम और स्वयं के प्रति बहुत कठोर ऐसे बनो, परंतु जो व्यक्ति स्वयं के प्रति रहम दिल नहीं और स्वयं पर कृपा नहीं करता और स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा कठोर है वो दूसरे के प्रति भी रहम दिल नहीं बन सकता। यदि हम अपने मन को एक स्क्रीन पर देखें तो हम देखेंगे जीवन की इस यात्रा में, बचपन से अब तक की या अध्यात्म की यात्रा में, जब से ज्ञान में है तब से अब तक उसे सब कुछ पता था, पुरुषार्थ और परिणाम आज की मुरली से, विधि और सिद्धि, त्रिकाल का ज्ञान, नॉलेजफुल, उसके बाद भी उसने कुछ कुछ गलतियां की है। एक मेथड है उसको डांटना, उसको उसके प्रति कठोर हो जाना, पर वो नहीं मानेगा, उसका स्वभाव छोटे बच्चे की तरह है। उसको हम कहें कि ये बिल्कुल नहीं करना तो वो वही करना चाहेगा जिसके लिए उसको मना किया गया है। उसको जो विधि हम सिखाते हैं उसके विपरीत वो कार्य करता है। मन का खेल बहुत सूक्ष्म है, डिसेप्टिव है, कब धोखा दे पता ही नहीं चलता है। एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, जो कि बहुत मस्ती करता था और बाहर के जो भी उसके दोस्त थे सबको पकड़ पकड़ के पीटता था, बड़ा मोटा था तो उसको बहुत मजा आता था। उसके पिताजी ने उसको समझाया, जब भी तुम्हें घुसता है तुम गिनती चालू करना, एक दो तीन चार सौ तक, ताकि तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि बात बात पर गुस्सा करता था। उसको समझाने के लिए, उसका गुस्सा शांत होने के लिए पिता ने उस बच्चे को यह विधि बताई जो कि एंगर मैनेजमेंट में काफी बताई जाती है। गुस्सा आए नंबरिंग चालू करो। तो कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी ने देखा उसका वो बेटा एक दूसरे बच्चे की छाती पर बैठा हुआ है पकड़े हुए। तो पिताजी ने कहा, भूल गया मैंने तुझे क्या कहा था? उसने कहा, नहीं भूला हूं, वही कर रहा हूं गिनती, जैसे ही सौ पूरे हो जाएंगे इसको ठिकाने लगाना है। पहले 100 तक पूरा करता हूं, तब तक ये भाग ना जाए, इसके लिए दबा के रखा है इसको। पूरा होगा तो इसको फिर देखूंगा। मन भी ऐसा ही करता है, उसे जो शिक्षाएं दी गई और उसको कहा गया ये करो तो वो कुछ और करता है, उसको कहो यहां नहीं जाना वो वहीं जाता है, उसको कहो ये नहीं देखना चाहिए वो वही देखता है। जो जो मना करो वो करता है। मन को वश में करने का पहला नियम है सेल्फ कंपैशन। उसको समझो कि ये छोटा सा बच्चा है। चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना है, किस तरह ये बच्चे का मन काम करता है। उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे थोड़े समय वो मानेगा फिर वही करेगा। हमने क्लास में सुना कि अमृत वेले के बाद बिल्कुल सोना नहीं है, उसको हमने समझाया और जबरदस्ती की उसको और बोल दिया बिल्कुल नहीं सोना, तो एक दिन दो दिन और तीसरे दिन ऐसा सोएगा कि उसकी मुरली भी चली गई और 8 बजे नींद खुली सीधा, और सारे दिन भर परेशान। जिस बच्चे को ये समझाया जाता है बचपन से कि ऐसा है ऐसा नहीं करना, वो उसी को धारण कर लेता है। जो उसको समझाया जाता है उसी अनुसार कार्य करता है, और वो नहीं हुआ तो दुखी भी होता है। ये भी एक दूसरा स्वभाव है मन का। कोई अगर जैन धर्म से होगा और परिवार से होगा और उसको बचपन से सिखाया गया है कि 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, और वो अचानक कहीं चला जाए अपने दोस्तों के साथ और कुछ खा ले जबरदस्ती, तो उसे बहुत दुख होगा, लगेगा पाप हुआ, और आधी रात को उसको उल्टियां होगी और उसको लगेगा हाँ मेरे पिताजी सही कहते थे। रीइन्फोर्स होगा। ये एक दूसरा स्वभाव है मन का। मन मल्टी डायमेंशन है, डायमेंशनल है, इतनी अलग अलग तरीके से काम करता है। तो रहम इसी मन पर, उसको बहुत डांटना नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको समझना है, अंडरस्टैंड। रहम दिल होकर बच्चा को समझाना है, ये खाएंगे तो क्या होगा, ये खाएंगे तो क्या होगा। एक चित्र किसी ने भेजा था, एक छोटा सा बच्चा एक खिलौने से खेल रहा है, उधर से भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में खड़ा है, और वो कहता है, वो भगवान के हाथ में एक बड़ा सा खिलौना है टेडी बेयर, और बच्चे के पास छोटा सा, तो भगवान कहते हैं वो दे दो मैं तुमको बड़ा दूंगा। वो कहता है नहीं दूंगा, तब तक नहीं दूंगा जब तक दिखाओगे नहीं क्या दोगे, और जब उसको दिखाया जाता है बड़ा टेडी बेयर तो वो छोटा छोड़ देता है बड़ा दे लेता है। मन को बड़ा दिखाना है तो फिर वो जो छोटा है संसार, उसकी चीजें, उसके पद, उसके पोजीशन, उसके वैभव, उसके आकर्षण, उसकी आसक्तियां, वो देह। आज सुबह की मुरली में प्रश्न है एक, चौथा नंबर शायद, आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है, शरीर से, छोड़ना नहीं चाहती, विकारी छींची पर पकड़े हुए है। इस शरीर से भी ज्यादा कोई और उसको दे दिया जाए अच्छा, तब इसके प्रति लगाव छूटेगा। तो अपने मन से बात करना, उसको समझाना कहां जा रहा है, क्या चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूर्ख मन, ऐसे बात करना। हे प्यारे मन, ऐसे भी बात करना, और उसको समझाना कहां जा रहा है। गोविंद को छोड़कर, राम को छोड़कर काम की शरण में जा रहे हो, क्या पाया अब तक जाकर, दुखी हो या फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, वही वही गर्भ में घूम रहे हो। तो सबसे पहली विधि है सेल्फ कंपैशन, उसके बाद नेक्स्ट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, साक्षी होकर देखना। साक्षी भाव अध्यात्म का सर्वोच्च भाव है, नॉन इंटरफियरेंस, जो हो रहा है सब कुछ देखना, कुछ भी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करना, खाली देखना, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, साक्षी। कई सारी ध्यान की विधियां हैं संसार में, उसमें बताते हैं केवल मन को देखो, शांत बैठो और मन को देखो। मन जैसे एक झील है, एक झील तरंगे उठ रही है, जिसको वृत्ति कहा गया है, वृत्ताकार, चित्त की उठने वाली तरंगे अर्थात वृत्ति, उनको देखना, भर करना कुछ नहीं, खाली देखना। ये योग का प्रयोग नहीं है, परंतु संकल्पों का प्रयोग है। किसी एकांत विजन निर्जन स्थान पर जाकर बैठना, आंखें बंद करना और केवल देखना, मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये मन एक झाड़ है, विचार पक्षी है, पक्षी आए बैठे, हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तदात्म नहीं किसी के साथ, आए बैठे और चले गए, अच्छा आया चला गया, बुरा आया चला गया, नॉन आइडेंटिफिकेशन। ये विधि है मन को शांत करने की। जो रेसिंग माइंड है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जितना जो अस्थिर उसका मन उतना तेजी से काम करता है, दौड़ता है बिल्कुल, एक मूवमेंट भी शांत नहीं। आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा था, धम्मपद में लिखा है, कि आप एक ही करवट पर सोते हो, रात जैसे सोते हो एक करवट पर, सुबह उठ के देखते हैं तो उसी करवट पर रहते हो, क्या रात को भी आप जागे रहते हो? हम तो कहां सोते और कहां से उठते हैं, और रात भर टॉसिंग ऑन द बेड। तो वो कहते हैं आनंद, क्योंकि मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट बदलने की आवश्यकता नहीं। करवटे तो वो बदलते हैं जो अशांत है, जो जितना अशांत अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में इतनी हलचल द्वंद चालू है कि दिन भर भी नींद नहीं, रात में भी नींद नहीं। कई सारे मरीज आते हैं, वो कहते हैं नींद ही नहीं है, दिन दिन बीत गए, रात बीत गई, नींद ही नहीं है। ऐसी अनिद्रा। तो एक अभ्यास रोज करना है सबको, वो है अपने आप को देखना साक्षी होकर। एक स्क्रीन है जिसपे सब दिखाई दे रहा है, अच्छे विचार, अच्छे विचार आए तो खुश नहीं, बुरे आए तो दुख नहीं। कोई बुरी स्मृतियां, पुरानी यादें, दुखदायी यादें, दर्द वाली यादें, किसी ने धोखा दिया, अपमान किया, निंदा की, ग्लानी की, पीड़ा दी, दुख दिया, टॉर्चर किया इमोशनली, यादें आई और यादें चली गई, पक्षी आए और पक्षी चले गए, हम साक्षी हैं। वी आर नॉट टचिंग एनीथिंग। सुबह अभ्यास करना उसी समय अमृत वेले के बाद, और सबसे अच्छा होगा कि यह अभ्यास प्रकृति के सानिध्य में किया जाए। कोई झील, कोई पर्वत, कोई समंदर, कोई गार्डन, कोई टेरेस, कोई एकांत, गहन एकांत, जहां मनुष्यों के पैरों के पदचाप की भी आवाज नहीं। इतना मौन जहां है, इतना एकांत जहां है, जहां रात का सन्नाटा है या सुबह का वो सन्नाटा है, द सिबिलेंस ऑफ नाइट, ऐसे जो आवाज होते रहता है रात में, वहां पर बैठकर या सुबह सुबह बैठकर पक्षियों की आवाज, बादलों की आवाज, बारिश की आवाज सुनना, साक्षी होकर देखना मन को भी और फिर साथ साथ संसार को भी, नॉन इंटरफियरेंस। तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। कुछ ऐसी आदतें हमें अपने लिए बनानी है कि जो हमारे मन को स्थिर करे। उसमें हो सकता है कहीं कहीं दमन की आवश्यकता पड़े, थोड़ा थोड़ा दमन भी जरूरी है। एकदम ही उसको छोड़ दिया जाए तो कहां से कहां चला जाता है। उसको सिखाना है, नई आदतें डालनी है। एक मेडिकल के वैज्ञानिक या डॉक्टर ने बहुत सारे प्रयोग किए थे 1950s और 1960s में। और उसने ये कंक्लूजन निकाला था कि किसी भी नई आदत के लिए 21 दिन लगते हैं। वो पहले सर्जन थे, फिर प्लास्टिक सर्जन बने, तो वो एम्पुटेशन करते थे। एक व्यक्ति है जिसका पैर सड़ गया है, गैंग्रीन हो गया, पैर को काट दिया, बिलोनी अबोनी एम्पुटेशन। पैर तो कट गया परंतु उस पेशेंट को लगता है मेरा पैर है, फैंटम लिम। उसको ये समझने के लिए कि पैर अब नहीं है, मिनिमम 3 वीक्स आर रिक्वायर्ड, 21 डेज। उसने एक दूसरा प्रयोग किया रूम के ऊपर कि जब हम नई जगह जाते हैं तो मिनिमम 3 डेज लगते हैं वहां सेट होने के लिए नए कमरे में, और पूरा घर जैसा लगने के लिए 21 डेज। उसने और एक प्रयोग में देखा जिनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, एंड दे टेक एटलीस्ट 3 वीक्स टू एक्सेप्ट द न्यू फेस। डॉक्टर मार्क्सवेल और अपनी बुक में सब कुछ वर्णन किया कि कैसे माइंड को थोड़ा टाइम लगता है नई आदत। जैसे कोई एक प्रकार का डाइट खा रहा है, उसको सडनली बोलो ये छोड़ दो और ये स्वीकार करो तो गड़बड़ होगी, बॉडी रिएक्ट करेगी धीरे धीरे धीरे। एनी डाइट चेंज शुड बी अ इवोल्यूशन नॉट अ रिवोल्यूशन। क्रांति नहीं करना है, वो ये खाते हैं वो खाते हैं हम भी खाएंगे, हमको भी ये बनना है वो बनना है। बॉडी रिएक्ट करेगी धीरे धीरे, क्षण क्षण समझकर। तो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत धीरे धीरे मन को समझाते हुए। उसको आदत है, जैसे हमने सुबह अमृत वेला उठने की आदत डाली, पहले उसको नहीं थी अज्ञान में, यहां धीरे धीरे आदत हो गई। कोई भी नई आदत के लिए इट टेक्स टाइम। माइंड एक पैटर्न थॉट प्रोसेस का बन चुका है, अभी नया पैटर्न बनाना है। मेडिकल में इसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, एंड इट इज पॉसिबल दैट न्यूरॉन्स डू चेंज। पहले कहा जाता था वो नहीं बदलते, बट नाउ न्यू पैटर्न्स कैन बी क्रिएटेड इन द ब्रेन, इन द न्यूरल नेटवर्क ऑफ द ब्रेन। तो नई आदत, और एक आदत सबको डालनी है, वो है ज्ञान के चिंतन की। उसके लिए हर दिन रोज सुबह की जब मुरली सुनते हैं उसमें से सबको एक काम करना है। हमने मुरलियां बहुत लिख ली, बहुत सारी डायरियां भर गई। पुरानी डायरी आज तक किसी ने खोल के देखी? नया तरावटी माल जो रोज आता है, नया वखर, पुराना कौन देखेगा? मुरली क्लास में गए, डायरी खोली, मीठे बच्चे, बाप को याद करो, वो लिखा, फिर प्रश्न लिखा, फिर उत्तर लिखा, फिर डायरी बंद की, डायरी बाजू में रखे और फिर डोलने लगे थोड़ा थोड़ा, और बीच बीच में नींद, और फिर मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, और एकदम से जागरण, और फिर से डायरी उठाई, और फिर से धारणा के लिए मुख्य सार 1-2, फिर वरदान, फिर स्लोगन, डायरी बंद, अब कल मिलेंगे, खबरदार अगर किसी ने डायरी खोली तो। और कुछ कुछ माता ऐसी महारथी है कि सेंटर पर ही अपनी डायरी छोड़कर जाती है, और फिर सेंटर से निकले और फिर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य खो गया, और फिर सीढ़ियां उतरते उतरते प्रश्न खो गया, घर पहुंचते पहुंचते स्लोगन धारणा के लिए मुख्य सार गया, नाश्ता बनाते बनाते वरदान कहीं खो गया, नाश्ता खाते खाते स्लोगन खो गया, और शाम तक पूरी मुरली खो गई। और फिर कोई कहता है आज की मुरली कैसी थी? तो बहुत अच्छी थी। क्या था वो मत पूछना, खबरदार जो अगर पूछा तो। पर थी बहुत अच्छी, पहले तो आते नहीं हो और फिर पूछते हो मुरली कैसी थी। तो रोज की मुरली से ये लिखना बहुत कर लिया, ये प्रश्न, ये उत्तर, ये धारणा, ये वरदान, ये स्लोगन, इसको बाजू में रखना है। 5 टॉपिक्स लिख लेने हैं डायरी में मुरली से, बस ओनली टॉपिक्स के नाम, जैसे आज की मुरली से। पहला टॉपिक, बाबा ने हम बच्चों को कौन से सम्मान दिए है, ये एक टॉपिक। दूसरा, सोचा और किया, तो सोचने और करने में कौन सी गैप है, What are the gaps in thinking and doing? बोलने में और करने में कौन सी गैप है? अपने मन को काम देना है, सारे दिन भर ये काम करना है। टॉपिक दिया उसको एक, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान क्यों देना है, ये टॉपिक है। तीसरा लिखा, अब इसके विषय में दिन भर सोचते रहना है, स्टेशन पर है, ट्रेन में है, लोकल में है, कार में है, बस में है, वेटिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, स्वयं को एक टॉपिक देना और उस टॉपिक के विषय में विस्तार करना, तो हमारी चिंतन की शक्ति बढ़ेगी। अगला टॉपिक, पोस्टपोन हम क्यों करते हैं, इसके ऊपर लिखना है, जो लिख सकते हैं, जो सोच सकते हैं बिना लिखे वो वैसे ही सोचे, वाई डू वी पोस्टपोन थिंग्स। आज का है ना, आज का काम अभी करो, बच्चों को एक पुरानी और एक पक्की आदत हो गई है, कौन सी, देख लेंगे, कर लेंगे, माला में आ जाएंगे, करना है जरूर, ये आदत पड़ गई है। बाप ताजा फल खिलाते हैं बच्चे, उसको भविष्य का बना देते हैं। तो आज का काम अभी, कहावत है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक बैंक के मैनेजर ने अपनी ऑफिस में ये लिख के रख दिया, क्योंकि सब लोग टालमटोल करते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेट करते थे, पोस्टपोन करते थे हर एक बात को, तो उसने कबीर का ये दोहा वहां लगा दिया, पर उल्टा ही परिणाम हो गया। दूसरे दिन उसका क्लर्क उसकी सेक्रेटरी के साथ भाग गया, कैशियर था वो पैसे लेके भाग गया, पत्नी जो थी वो ऑफिस के एक एम्प्लॉय के साथ भाग गई। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वेटिंग में थे सब लोग। तो ये टॉपिक है, तो मुरली से टॉपिक एक्सट्रैक्ट द टॉपिक्स, उनको लिख लो खाली उतना ही, और सारे दिन भर फिर उसके विषय में सोचना, उसका विस्तार करना, तो मुरली का हम स्वरूप बनेंगे। खाली लिख कर नहीं, डायरिया भर गई, बाप आए आत्माभिमानी बनो, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने, बाप पतित से पावन बनाने आए, काम महाशत्रु है, आदि मध्यांत दुख देता है, पूरी डायरिया भर दी है। दिव्य गुण धारण करने, सेवा भी करनी है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, मुखला देख ले पांच प्राणी, सदर्शन चक्र घुमाना है। टॉपिक्स, तो मन को वश में करने की तीसरी विधि बताई, सेल्फ डिसिप्लिन, अर्थात न्यू कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव हैबिट्स। और एक हैबिट बताई, चिंतन, मनन, अध्ययन। स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ अर्थात निरंतर पढ़ाई होती रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, बिजी रखना है। रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट, ज्ञान की ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी अव्यक्त मुरलियां, स्पार्क की किताबें हैं, जगदीश भाई जी की लिखी हुई बुक्स है, मैगजीन्स है, अनुभव है, बहुत सारी चीजें हैं। अगला है सेल्फ एस्टीम, अर्थात स्वमान का अभ्यास। सबसे कम स्पीड है स्वमान के संकल्पों की, उसके भी आगे स्टेजेस है, परंतु स्वमान, उसके बाद में स्पीड थोड़ी बढ़ती है साधारण संकल्पों में, स्पीड और बढ़ती है निगेटिव संकल्पों में, स्पीड और बढ़ती है व्यर्थ संकल्पों में, स्पीड और बढ़ती है विकार के संकल्पों में, और द फास्टेस्ट स्पीड है काम विकार के संकल्पों में। आवेग है, आग है, सुनामी है, थॉट स्पीड सबसे ज्यादा, काम बाकी विकार, व्यर्थ निगेटिव साधारण, हायर कॉन्शियसनेस समान, और फिर योग की अवस्था है जहां कम कम होते जाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, समान का अभ्यास। और समान कहां से निकालेंगे रोज? मुरली से। पावरफुल समान निकालने हैं उसमें से, और वो छोटा ही होगा, और एक लाइन हो सकती है, साइकोलॉजी में अफर्मेशंस कहा जाता है, ऑटो सजेशंस कहा जाता है, किताबें लिखी है ढेर सारी लोगों ने ऑटो सजेशंस के ऊपर, अमीर कैसे बने, सोचो मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, तीन इसमें डिवाइड किए हैं समान को या अफर्मेशंस को, पहला प्रेजेंट टेंस वाले समान, दूसरा फ्यूचर टेंस वाले, और तीसरा नेचुरल। जैसे किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है तो वो उसका अफर्मेशन होता है, मैं स्मोकिंग से छूट रहा हूं, प्रेजेंट। अगला होता है फ्यूचर टेंस वाले, मैं स्मोकिंग से जल्दी ही छूट जाऊंगा। तीसरा होता है नेचुरल, स्मोकिंग छोड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान है। तीन प्रकार के अफर्मेशंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस वाले, फ्यूचर टेंस वाले और नेचुरल। जैसे एक व्यक्ति है, ज्ञानी है, योगी है, तपस्वी है, ब्राह्मण आत्मा है, उसको कोई एक ऐसी आदत पड़ गई है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, रात में सोने से पहले इधर उधर 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 हाथ चलते रहते हैं, ये देखू वो देखू, ये करू वो करू, शांति से सोता नहीं, अमृत वेला ठीक से करता है पर सोने की विधि गलत है, वहां पर एफर्मेशंस और सेल्फ एस्टीम और सम्मान का प्रयोग किया जाए कि मैं योगयुक्त होकर सोता हूं, मैं योगयुक्त होकर सोऊंगा, सोऊंगा ये फ्यूचर टेंस, और योगयुक्त होकर सोना तो मेरा स्वभाव है। कोई भी एडिक्शन, एनी एडिक्शन, एनी हैबिट जो कि हमको लगता है श्रीमत और मर्यादा के विरुद्ध है, उसको छोड़ने के लिए इन तीन प्रकार से नए एफर्मेशंस क्रिएट करने हैं माइंड में, समान के संकल्प। जैसे दूसरा उदाहरण, किसी को सेंशुअल फैंटेसीज, विकारी कल्पना की आदत पड़ गई है, वो ये सोचे कि मेरा हर संकल्प प्योर है, पवित्र है, मेरा हर संकल्प पवित्र होगा, पवित्र संकल्प मेरा स्वभाव है, प्रेजेंट फ्यूचर नेचुरल। एनी हैबिट, किसी को ओवर ईटिंग की हैबिट है, जो देखो वो खाओ खाओ खाओ, क्या बना है, दिन रात भोजन ही बुद्धि में घूम घूमते रहता है। जैसे कल बताया था चप्पल, कब भट्टी पूरी होगी और कब ब्रह्मा भोजन खाएंगे, बहुत हो गया ये भाषण विषण। सेल्फ एस्टीम, अगला है सेल्फ चर्निंग, एक अलग से बता रहे हैं चर्निंग विचार। यहां पर चर्निंग में आत्मविचार, यहां पर चर्निंग में अपने बचपन से लेके अब तक के सारे जीवन को देखना। तो अभी अभी हम ये प्रयोग करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, डायरी पेन पेपर पेंसिल सब नीचे। माइंड रिलैक्स, शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ दोनों पैर स्थिर। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चैतन्य सत्ता, संपूर्ण शांत, संपूर्ण मौन, भीड़ में एकांत का अनुभव, शरीर की सारी हलचल समाप्त, अव्यक्त वायुमंडल, अव्यक्त प्रवाह, मैं एक तेजोमयी आत्मा, जीवन की इस अनंत यात्रा में मैं आज स्वयं को देखती हूं, एक विशाल पर्दा, एक स्क्रीन, मेरे अब तक के जीवन की संपूर्ण यात्रा मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरा जन्म लौकिक माता पिता, मेरा बचपन वो घर, मेरा दादा दादी, नाना नानी, ये वो समय है जब इस जीवन की यात्रा मैंने जादू की और आगे वो स्कूल, वो मित्र, वो खेल कूद के दिन, वो क्लासरूम, वो टीचर्स, और आगे दिखाई दे रहा है सब कुछ, शांत चित्त, साक्षी भाव, स्वयं को देखता मैं, स्वयं को खोजता मैं, कॉलेज वो पढ़ाई, जीवन का वो दिन जिस दिन परमात्मा परिचय मिला, वो मधुबन की प्रथम यात्रा, वो भगवान से मिलन, वो मधुबन की सेवाएं, वो बाबा का प्यार, देख रहा हूं सब कुछ, ये गृहस्थ, ये व्यवसाय, ये जॉब, वर्तमान परिवार, सांसारिक प्राप्तियां, उपलब्धियां, डिग्रियां, सम्मान, वर्तमान पुरुषार्थ, अमृत वेला, मुरली, दिन भर के कर्म, मन की स्थिति, अवस्था, क्या चल रहा है अंदर, क्यों ये हलचल, आत्ममंथन, क्या करना है, कौन सा तीव्र पुरुषार्थ करूं, कहीं जीवन में दिखावा तो नहीं, कोई ढोंग, कोई आडंबर तो नहीं, क्या मैं बाबा से पूर्ण रूपेण सच्चा हूं, देख रहा हूं खुद को, अगला है सेल्फ टॉक, खुद से बातें करते रहना, लॉन्ग वॉक पर जाना और बात करना खुद से, खुद से खुद बातें करते रहना, सतयुग त्रेता में देवताओं से बात की, द्वापर कलयुग में मनुष्यों से, अब समय है स्वयं से और बाप से बात करने का, अपने ही मन से बात करना, खो जाना उन बातों में, जीवन के गहनतम प्रश्नों का चिंतन। ये मुरली चल रही है, इस मुरली में क्या कह रहा है वो, कितना मुझे समझ में आ रहा है। मुरली आ रही है, मुरली आ जा रही है, मैं अनटच्ड क्यों? क्या करूं जो इन शिक्षाओं को धारण कर लूं? क्या करूं जो हमारी अवस्था भी देह में रहते कर्मातीत दादी गुलजार को हम देखते हैं, किस विराट मौन में आत्मा है, किस जगत में है, क्या उस जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं, किस अव्यक्त धाम में है चेतना, किस निर्वाण को प्राप्त किया है, यह हमारी दृष्टि केवल देह तक है और हमारे देह के प्रश्न और देह के संबंधित प्रश्न, क्या वो आत्मा उस परम लोक में सुन पा रही है? तो जगत मौन का है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों का है, अनुभवों का है। कहा जाता है ज्ञानी तीन अवस्था से गुजरता है, पहली अवस्था अज्ञान और फिर परम ज्ञान और फिर अज्ञान। पहला अज्ञानी होता है, उसे कुछ पता नहीं, फिर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान की ऊंचाइयों को चढ़ता है और आध्यात्मिक अनुभवों से बहुत शिखर पर पहुंचता है और फिर उस शिखर पर भी अहंकार आने लगता है, कई कई वहीं रुक जाते हैं, पर उसके आगे की स्टेज है फिर से जैसे कि अज्ञानी, जैसे कि छोटा बालक जिसे कुछ भी नहीं पता। उस अवस्था तक चला जाता है और उस अवस्था को लोग समझ नहीं पाते, प्रायः लोग ऐसे लोगों को विक्षिप्त पागल कहते हैं संसार में, क्योंकि उनकी हरकतें नॉर्मल जैसी नहीं होती। संसारी जो इतनी लोअर प्लेटफॉर्म पर है वो उस चेतना को क्या समझ पाएंगे? आध्यात्मिक अनुभूतियों की गुफा वो ज्ञानी की अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था। यह नन्ना सा शिशु, इसे नहीं पता जीवन की यात्रा कैसी होगी, इसके चेहरे पर वैसी ही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी, इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। यह नन्ना सा शिशु, इसे नहीं पता जीवन की यात्रा ओबड़ खाबड़ होगी या समतल। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जैसे वो छोटा सा बच्चा, उसे कोई लेना देना नहीं है, दूध वाले ने दूध कम दिया ज्यादा दिया कोई लेना देना नहीं, चेहरे पर वो निर्विकारिता जो बुद्ध ने कभी जीवन भर की साधना के बाद पाई, ऐसी बोधि अवस्था ज्ञानी की परम अवस्था है, जिसमें वर्तमान समय गुलजार दादी है, उपराम है, देह के जगत से परे है, जिस लोक में है उसमें प्रवेश भी कितना मुश्किल है, देह को देखने वाली आत्माएं वहां प्रवेश नहीं कर सकती, देह के चिंतन में आत्मा वहां जा नहीं सकती, भूख और प्यास और नींद के वश और सांसारिक चिंतन करने वाली आत्मा उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकती, वो वह परम लोक है ज्ञान का, परम आकाश, निरागस्ता बालक सी। जिसमें क्या क्या पाया वो उपलब्धियों के भी परे की अवस्था, किसी बात का अहंकार नहीं, अहंकार शून्य चेतना है, संसार में रुकी इसलिए है ताकि संसार का कल्याण करे, व्याख्यान से नहीं, मौन व्याख्यान से, बोलकर नहीं, प्रकंपन से, किसी की मदद हाथ से नहीं, परंतु मनसा शक्तिशाली प्रकाश से। सेल्फ टॉक, उसके बाद है सेल्फ लिसनिंग, अंतकरण से कुछ आवाज आ रही है उसको सुनना है, कॉन्शियस से कुछ निकल रहा है जो कॉन्शियस तक नहीं पहुंच रहा, अंतकरण की आवाज चेतना तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि दबा दी गई है, उस आवाज को सुनना, उस मौन पुकार को सुनना, सेल्फ लिसनिंग। दूसरों को बहुत सुन लिया, संसार में सुनाने वाले बहुत हैं, पर अनुभव नहीं, अनुभव अंदर से होगा, खुद को सुनने से, क्या कह रहा है आत्मा, क्या कह रही है, और जिसे अंतकरण की आवाज सुनाई दी उसे फिर भगवान की आवाज भी सुनाई देगी, उसे आत्माओं की आवाज सुनाई देगी, प्रकृति की आवाज सुनाई देगी, एडवांस पार्टी की आत्माओं की आवाज सुनाई देगी, संसार के दुखी अपवित्र विकारी भक्त सन्यासी योगी तपस्वी सबकी आवाजें सुनाई देगी। एंड दे शैल हियर द अनहर्ड एंड दे शैल टच द इम्पाल्पेबल एंड दे शैल सी द इनविजिबल एंड दे शैल नो द अननोन एंड दे शैल फील द अनफेल्ट। उस मौन के चिदाकाश में घटाकाश प्रति ध्वनित होगा, प्रतिबिंब दिखेगा स्वयं का। सेल्फ लिसनिंग, बाकी सभी आवाजों को बंद करना और अपने आप को सुनना, क्या कह रहा है। और लास्ट आठवां पॉइंट, सेल्फ चेकिंग। सभी जुड़े हुए हैं और मन रूपी बंदर की चेकिंग जब तक ना हो और बार बार चेकिंग, वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं समझेगा। आदत पुरानी और पक्की, दो शब्दों का प्रयोग किया है सुबह की मुरली में। ऐसी बहुत सी आदत पक्की और पुरानी हो गई है, उन्हें तोड़ना है। अचानक नहीं टूटेगी, चेकिंग लगेगी, बार बार चेकिंग। अगर गलती हो तो रुकना, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चढ़ती दीवारों पर, गिरती सौ बार, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिद्धू में गोताखोर लगाता, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयत्न, निरंतर सेल्फ चेकिंग, जड़मती हो तो सुजान, सिल पर पड़त निशान। रुकना, ठहरना और देखना मन को, चेक करना। अगर वो सो जाए तो उसे जगाना, जाग मचिंदर गोरखाया। मुझसे बात करना, जागो हे तपस्वी जाग, हे योगी जाग, कब तक नाचते रहेगा, इसी तरह शांत हो जा। तो आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्म अध्ययन, मराठी में एक सुंदर शब्द है सिंहावलोकन, हिंदी में भी है, जैसे सिंह होता है पीछे मुड़कर देखता है चलते चलते बीच में, रेट्रोस्पेक्शन, अपने आप को पीछे मुड़कर देखना, इंट्रोस्पेक्शन, अंदर झांक कर देखना, पीछे और आगे, और फिर पाना कहां हूं मैं जीवन के इस अनंत सागर में, चेतना खो तो नहीं गई। तो ऐसे 8 बातें हमने बताई। सबसे पहली सेल्फ कंपैशन, दूसरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तीसरा सेल्फ डिसिप्लिन, चौथा सेल्फ एस्टीम, पांचवा सेल्फ जर्निंग आत्ममंथन, अगला सेल्फ टॉक, अगला सेल्फ लिसनिंग, और लास्ट सेल्फ चेकिंग। तो ये 8 चीजें रोज ऐसे होने चाहिए हमारे बिना किए, इसकी ऐसी आदत डाल दो, जैसे वो आदत पक्की हो गई, अब इस आदत को पक्की कर दो। नई आदतों का सृजन, नई आदतों का निर्माण, और उसके लिए धारणाओं की कुछ बातें बताई। अमृत वेले के बाद क्या करना है, क्यों नींद तो बहुत अच्छी आती है उस समय, आवाज आता है आ जाओ मेरे लाडलो, बेड पुकारता है त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर निम प्रभात में लाया हूं, ताज तख्त तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूं। कौन कह रहा है, बिस्तर वो कह रहा है आ जाओ मेरे पास, मेरी गिरफ्त में, तुमको इतने अच्छे, कई लोग कहते हैं, एक बहन कह रही थी अमृत वेले 4 बज गए थे और इतना अच्छा स्वप्न दिख रहा था, और स्वप्न में बाबा दिख रहे थे, उठना चाहिए कि नहीं, बाबा दिखाई दे रहे हैं, मतलब एकदम सम्मुख है, और मैं नींद में हूं और बारिश उधर हो रही है बाहर, तो आप बताओ, क्योंकि मिलन तो हो ही रहा है, तो उठू या नहीं उठू, क्या कहेंगे, भ्रम है भ्रम। जगदीश भाई जी से किसी ने कहा था, भाई साहब कभी कभी योग में ऐसी अवस्था आती है कि परमधाम भी नीचे छूट जाता है, एकदम जैसे निर्विकल्प समाधि जो होती है ना, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, निर्ग्रंथ समाधि, महावीर की, बुद्ध की, निर्वाण स्थिति, उसमें मैं पहुंच जाती हूं। तो ये कौन सा लोक है, भाई साहब ने कहा था ये निद्रा लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परमधाम मूल वतन, उसके ऊपर निद्रा लोक चालू होता है। तो सारे भ्रम है, सारे भ्रमों से स्वयं को मुक्त करना है, जिसको हमने सत्य समझ रखा है वो मन के खेल है, ऐसा कुछ नहीं है, यहां लाइट वहां लाइट, इधर लाइट उधर लाइट। कल परसों एक बहन मिली थी, वो कहती थी मैं जो भी स्वप्न में देखती हूं दूसरे दिन साकार हो जाता है, पर डर रहता है कहीं बुरा ना देख लूं, किसी को ब्रह्मा बाबा यहां दिखते हैं वहां दिखते हैं, इधर लाइट उधर लाइट, ये सब एक तरफ, दे आर बट इल्यूजन्स ऑफ द माइंड। यहां तो आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा समत सारे विश्व को, संसार को, देह देह की वस्तु, धर्म, संस्कार, स्मृति, इच्छा, कल जो सारी बातें बताई थी, वस्तु, भोग, धर्म, भाषा, स्थान, सब एक तरफ और मैं आत्मा हूं, तो ऐसे स्वयं को जगाना है। उत्तिष्ठ भारत, हे मगध निवासी, हे मागधो, हे भारत के निवासी जागो। भार बाप मगध में आया है मागधों को जगाने। श्रृणवंत विश्वे, उपनिषद का ऋषि चट्टान पर खड़ा होकर पुकारता है, श्रृणवंत विश्वे अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो। ई आर चिल्ड्रेन ऑफ डिविनिटी। आए धामिनी दिव्यानी तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात्। वो तुम हो जो वेदों का परम पुरुष है। सन्यासी सिट्स ऑन द हेड्स ऑफ वेदास, ऐसे बेहद के वैरागी तुम हो परम पुरुष। आदित्य वर्णम सूर्य सा तुम्हारा प्रकाश है। तमसा परस्तात, तमस तिमिर अंधकार, रात की तारीकी को नष्ट करने वाले। ओम शांति।